नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। सरकार ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध अगले आदेश तक बढ़ाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, उचित समय पर नीतिगत निर्णय और आर्थिक सुधारों से भारत कोविड संकट से निपटने में सफल रहा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने कहा, पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार संबंध बहाल करने पर गंभीरता से विचार करेगा। मॉस्को आतंकी हमले में मृतकों की संख्या बढ़कर 133 हुई और महाराष्ट्र की नाहिद देवेचा ने पंचकुला में इंडियन मास्टर्स राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते। दोपहर समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और प्याज के मूल्यों को नियंत्रण कर में रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्याज के निर्यात पर 31 मार्च 2024 तक रोक लगाई गई थी, जिसे अब अगले आदेश तक बढ़ाया जा रहा है। पिछले साल दिसंबर में सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि प्रत्येक मामले के आधार पर मित्र देशों को प्याज के निर्यात की अनुमति दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि समुचित और समयबद्ध फैसलों तथा आर्थिक सुधारों ने कोविड संकट से उबरने में भारत की सहायता की। बेंगलुरु में आज विचारक मंच के एक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान वैश्विक समुदाय ने भारत की भूमिका को पहचाना और इसे सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में देखा।
Global financial crisis of 2008 and 2009 was limited to some countries, whereas 2020's COVID was across the board. No country was free of it. It was a global crisis truly, and despite that global crisis, today India is the fifth largest economy. Today India is the fastest growing economy, and it shall sustain being the fastest growing in the next few years as well.
वर्ष 2020 और 2022 के बीच कोविड और बाद में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पूरी दुनिया में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। खाद्य सामग्री, ईंधन और उर्वरकों के मूल्य आसमान छूने लगे थे और राजस्व संग्रह में गिरावट हो रही थी। संकट के समय जिन देशों ने अतिरिक्त मुद्रा का प्रवाह किया, वो देश आज 2 अंकों में महंगाई का सामना कर रहे हैं। बाजार की मांग में गिरावट आई है, ब्याज दर में बढ़ोतरी हुई है और अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ रही है। लेकिन भारत ने गरीबों को अन्न उपलब्ध कराया, एमएसएमई की मदद की, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को जीविका प्रदान की और टीके लगवाए। आर्थिक सुधारों ने प्रणाली को पारदर्शी बनाया और उद्यम करना आसान बनाया। देश के उद्यमियों, किसानों और युवाओं की क्षमता से अर्थव्यवस्था में तत्काल सुधार नजर आया। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड संकट से उबरने में भारत के सिद्धांत को आज पूरी दुनिया ने पहचाना है। बिहार में एनडीए गठबंधन के घटक दल जनता दल यूनाइटेड ने आज सभी 16 लोकसभा सीटों से अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। अधिकांश नामांकित वर्तमान सांसद हैं। सीवान लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद कविता सिंह और सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से सांसद सुनील कुमार पिंटू का टिकट पार्टी आलाकमान ने काट दिया है। सीवान से विजय लक्ष्मी देवी और सीतामढ़ी लोकसभा सीट से देवेश चंद्र ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्व सांसद लवली आनंद शिवहर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। सीट बंटवारे के समझौते में जनता दल यूनाइटेड को यह सीट भारतीय जनता पार्टी से मिली है। पार्टी से अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में मुंगेर से राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार और पूर्णिया से संतोष कुशवाहा शामिल हैं। भागलपुर संसदीय क्षेत्र से मौजूदा सांसद अजय कुमार मंडल, बांका से गिरिधारी यादव और कटिहार सीट से दुलाल चंद्र गोस्वामी को फिर से टिकट दिया गया है। पश्चिम बंगाल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने कल राज्य की 4 प्रमुख लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। सीपीआईएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम मुर्शिदाबाद, अल्केश दास राणाघाट, सुकृति घोष बर्धमान दुर्गापुर और श्यामली प्रधान को बोलपुर निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के साथ सीट बंटवारे का समझौता करने के बाद अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम एएमएमके ने आज 7 चरण के लोकसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करते हुए एएमएमके महासचिव टीटीवी दिनाकरण ने बताया कि एएमएमके भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के साथ सीट बंटवारे के समझौते में द्रमुक शासित दक्षिणी राज्य में 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दिनाकरण थेनी लोकसभा सीट से और सेंथिल नाथन त्रिची से उम्मीदवार होंगे। निर्वाचन आयोग अपने आदर्श वाक्य कोई मतदाता पीछे न छूटे पर ध्यान केंद्रित करते हुए हर समय सुलभ मतदान के लिए कार्य कर रहा है। इस अभियान पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता और 40% विकलांगता वाले दिव्यांगजन घर से मतदान कर सकते हैं। प्रत्येक मतदान केंद्रों पर स्वयंसेवक और व्हीलचेयर उपलब्ध रहेंगे। आयोग दिव्यांगजन और बुजुर्गों के लिए परिवहन सुविधा की भी व्यवस्था कर रहा है। आयोग ने दिव्यांगजनों के लिए सक्षम मोबाइल ऐप शुरू किया है। दिव्यांगजनों द्वारा प्रबंधित मतदान केंद्र, केवल महिलाओं द्वारा प्रबंधित मतदान केंद्र और मॉडल मतदान केंद्र भी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में भी होंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पूर्व वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया और आंध्र प्रदेश से युवा जनश्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी वाईएसआरसीपी के पूर्व सांसद वरप्रसाद राव वेलागापल्ली भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। नई दिल्ली में आज दोनों को भाजपा महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की उपस्थिति में पार्टी में शामिल किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भावी रणनीति तय करने के लिए आम आदमी पार्टी की आज प्रमुख बैठक होगी। राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की ये पहली बड़ी बैठक है। प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में बृहस्पतिवार को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। अदालत ने शुक्रवार को उन्हें 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया था। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आबकारी नीति घोटाला मामले में भारत राष्ट्रीय समिति की नेता के कविता की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत 26 मार्च तक बढ़ा दी है। सीबीआई की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कविता की रिमांड पूरी होने पर अदालत में पेश किए जाने के बाद ये आदेश पारित किया। राजस्थान में जयपुर के बस्ती क्षेत्र में एक रासायनिक फैक्ट्री में आग लगने से 6 लोग मारे गए और 2 घायल हो गए। आग बुझाने के लिए 9 दमकल गाड़ियां लगाई गईं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि ग्रामीणों ने मुआवजे और फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जयपुर आगरा राजमार्ग अवरूद्ध कर दिया है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आग लगने से 4 बच्चों की मौत हो गई और उनके माता पिता घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि मोबाइल चार्ज करते समय शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार संबंधों को बहाल करने पर गंभीरता से विचार करेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने लंदन में कहा कि पाकिस्तानी व्यापारी भारत के साथ व्यापार फिर शुरू करना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच व्यापार संबंध अगस्त 2019 से निलंबित हैं। एक रिपोर्ट।
भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों को कम कर दिया था। भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट कर दिया कि संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं। भारत ने यह भी कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में सामाजिक आर्थिक विकास और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक उपाय करना भारत का आंतरिक मामला है। समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
मॉस्को में क्रोकस सिटी हॉल में हुए आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 133 हो गई है। रूस की जांच समिति का हवाला देते हुए रूस के सरकारी मीडिया तास ने खबर दी है कि छानबीन चल रही है और कंसर्ट हॉल से मलबा हटाया जा रहा है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 147 लोग घायल हुए। रूस ने कहा है कि 4 बंदूकधारियों सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इधर भारत में स्थित रूसी दूतावास ने आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने वाले लोगों के लिए ऑनलाइन शोक पुस्तिका शुरू की है। इस ऑनलाइन पुस्तिका में लोग कमेंट सेक्शन में अपने संवेदना संदेश अथवा मारे गए व्यक्ति के प्रति अपना समर्थन और सहानुभूति संदेश पोस्ट कर सकते हैं। क्रोकस सिटी हॉल में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान ने ली है। और अब खेल की खबरों के साथ हैं स्पर्श सक्सेना।
महाराष्ट्र की नाहिद दिवेचा ने पंचकुला में इंडियन मास्टर्स राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। दिवेचा ने कल हरियाणा की सुनीता सिंह पवार को लगातार सेट में हराकर महिला सिंगल्स खिताब जीता। नाहिद दिवेचा और किरण मुकाड़े की जोड़ी ने मिक्स डबल्स का खिताब जीता। फाइनल में नाहिद और किरण ने लगातार सेट में शीर्ष वरीयता प्राप्त कर्नाटका की प्रभागरण सुवैया और जयश्री रघु की जोड़ी को हराया। लेबनान में बेरूत विश्व टेबल टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स डबल्स फाइनल में आज 2 भारतीय जोड़ी आमने सामने होंगी। सत्यन ज्ञानशेखरन और मनिका बत्रा की जोड़ी का मुकाबला आकाश पाल और पॉयमंती बैश्य की जोड़ी से होगा। आज ही पुरुष डबल्स फाइनल में भारत के मानुष उत्पल भाई शाह और मानव विकास ठक्कर की जोड़ी का सामना भारत के ही मुदित दानी और आकाश पाल की जोड़ी से होगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज दोपहर 3:30 बजे जयपुर के सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। वहीं गुजरात टाइटन्स का सामना मुंबई इंडियंस से 7:30 बजे अहमदाबाद में होगा। इससे पहले कल रात कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 4 रन से हरा दिया। कल ही चंडीगढ़ में खेले गए पहले मैच में पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेट से हराया।
आज तपेदिक दिवस है। आज के दिन 1882 में डॉ रॉबर्ट कोच ने क्षय रोग के जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की पहचान की। इसका उद्देश्य तपेदिक के बारे में लोगों को जागरूक करना और इसके फैलाव को रोकना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों से भारत को टीबी मुक्त बनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने टीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे टीबी रोग को नियंत्रित करने की चुनौतियों के बारे में लोग जागरूक हो सकेंगे। आज दुनियाभर में ईसाई समुदाय पाम संडे मना रहा है। ये यरूशलम में यीशु मसीह के विजयी प्रवेश की याद में मनाया जाता है और ईस्टर रविवार के साथ संपन्न होता है। ईसाई बहुल राज्य नागालैंड में पाम संडे पूरे धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। भारत में सिंगापुर दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में होली की शुभकामनाएं दी हैं। भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त श्री साइमन वांग ने एक्स से बातचीत में कामना व्यक्त की कि यह त्यौहार सभी के जीवन में शांति और प्रसन्नता लाएगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बरसाना से होली समारोह की तस्वीरें भी साझा की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध अगले आदेश तक बढ़ाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा उचित समय पर नीतिगत निर्णयों और आर्थिक सुधारों से भारत कोविड संकट से निपटने में सफल रहा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने कहा पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार संबंध बहाल करने पर गंभीरता से विचार करेगा। मॉस्को आतंकी हमले में मृतकों की संख्या बढ़कर 133 हुई और महाराष्ट्र की नाहिद दिवेचा ने पंचकुला में इंडियन मास्टर्स राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।